राधा माधव कुंज निहारी
और जो ही सुमिल्लू बोटी तो जो ही सुमिल्लू
ग्लोरी श्री गुरु एन गोरांबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारु अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। अध्याय का नाम है ध्यान योग। बोलिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भूतस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोस्त्रात्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भूतस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोस्त्रात्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोस्त्रात्मकाञ्चनः। शब्दार्थ ज्ञान अर्जित ज्ञान विज्ञान अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव कूटस्थः आध्यात्मिक रूप से स्थित विजित इंद्रियः इंद्रियों को बस में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है योगी योग का साधक समदर्शी लोस्त्र कंकण अस्म पत्थर कांचन स्वर्ण। अनुवाद मेरे पीछे बोली। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकण हो पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है। तो अभी हम प्रार्थना पढ़ेंगे। आप सब लोग प्रार्थना निकाल सकते हैं जो शुरू में भूमिका है। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन फलाकयम् चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाश्चात देश तारिणे श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है, कूटस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से स्थित है, विजितेन्द्रिया इंद्रियों को वश में कर चुका है, युक्त इति उचित योगी, तो वो योगी युक्त कहलाता है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ। समलोष प्राथमिक कांचना और व्यवहार में कैसा होता है, मिट्टी पत्थर और सोने में समान रहता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी शास्त्र में क्या लिखते हैं। श्री प्रभुपाद जी परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। ये पहला वाक्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कोरा ज्ञान व्यर्थ है परम सत्य की अनुभूति के बिना। परम सत्य की अनुभूति का मतलब विज्ञान। इस श्लोक में जो शुरू के शब्द हैं क्या हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है, उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ शास्त्रों का ज्ञान तो हो गया उसे, लेकिन तृप्ति के लिए वो भौतिक संसार में कुछ ढूंढता है, किसी सुख के पीछे पड़ा हुआ है इस भौतिक संसार में। ऐसा नहीं, वो तृप्त है। तो विज्ञान, विज्ञान का मतलब यही है, जैसे कि तृप्ति मिले। कोरा ज्ञान व्यर्थ है। कोरा ज्ञान का मतलब है शास्त्रों का अभ्यास तो कर लिया है कि नहीं, लेकिन अगर अनुभूति नहीं हुई तो उससे तृप्ति नहीं होगी। और ऐसे कोरे ज्ञान से क्या होता है कि जो भौतिक जो वासनाएं हैं वो मिटती नहीं है, जो बुरी आदतें हैं वो समाप्त नहीं होती। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोरा ज्ञान व्यर्थ है। कोरा ज्ञान का मतलब यही है, परम सत्य का ज्ञान। परम सत्य का ज्ञान तो हो गया कि भाई कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, तो सैद्धांतिक रूप से तो आपने समझ लिया, परम सत्य का ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक विज्ञान ना हो, उसकी अनुभूति ना हो, है ना। तब तक जो भौतिक संसार की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो तो नहीं मिटती, है ना। तो पूरा ज्ञान व्यर्थ है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग पूरी गीता को याद कर लेते हैं, गीता के एक एक श्लोक को रख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आते हैं भौतिक आते हैं, संसारिक आते हैं, वो समाप्त नहीं होते। और वो जो है पान भी खाते हैं, सुपारी है, सब चलता है। गीता के श्लोकों को भी उन्होंने याद कर लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए तृप्ति वो ढूंढ रहे हैं भौतिक संसार में, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रैक्टिकल बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप से वो जब तृप्त होता है तो उसको जो ना वो चीजें नहीं चाहिए। जैसे कि सहजिया है ना, तो कृष्ण को भगवान मानते हैं और वो जो है प्रेम दिखाते हैं कृष्ण से, लेकिन उनको वास्तव में प्रेम तो नहीं है, है ना। ज्ञान है कि कृष्ण जो है ना भगवान है, परमेश्वर है, और वो गोपी भाव की नकल करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, कृष्ण के प्रेम में लौटते हैं और आंसू बहाते हैं। नहीं, उसके बाद उनको क्या चाहिए, बीड़ी। समझे, तो तृप्ति के लिए उनको बीड़ी चाहिए, है कि नहीं। तो वो जो है विज्ञान नहीं है। तो ऐसे बहुत से अपसंप्रदाय हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में, बहुत से अपसंप्रदाय हैं जो कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। तृप्त आत्मा का मतलब यही है कि वो फिर बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ देगा। किसी प्रकार का नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, है ना। तृप्त आत्मा का यही मतलब है कि अगर वो इसमें तृप्त है, जैसे एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, यस्तु आत्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न वेदते, है ना। तो आत्म का मतलब यहाँ कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा में रति वाला, यानी कृष्ण में ही रत है, और आत्म तृप्तश्च मानवः, और कृष्ण में ही तृप्ति प्राप्त करता है, और आत्मनेव च संतुष्टः, और कृष्ण में ही संतुष्टि प्राप्त करता है, तस्य कार्यं न वेदते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। है ये श्लोक है तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का कितना, 16वां श्लोक है, 17, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, यस्तु आत्मरत्रिव स्यात्। हाँ, निकालिए तीसरे अध्याय का श्लोक है 17। हाँ, तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 17, जिसमें भगवान कहते हैं तस्य कार्यं न वेदते, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। तो इसमें भी भगवान के तृप्त आत्मा, इसमें भी कहा आत्मतृप्तश्च, आत्मतृप्त है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु है ना, कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, कृष्ण के विरह में, वो कृष्ण को ही पाना चाहते हैं, वो दिन रात कृष्ण के प्रेम में डूबे चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं। तो जब स्थिति जो है ना, खैर ये तो बहुत ऊंची स्थिति है चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन उनके जो अनुयायी वो भी है ना, वो बिल्कुल जो है ना भौतिक जो वासनाएं हैं, कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हैं, है ना। तो इसको कहते हैं विज्ञान, तृप्त आत्मा। तृप्त आत्मा का मतलब ये हुआ कि उसको जो है अब कुछ और चीज नहीं चाहिए, तृप्त है वो। तृप्त नहीं भी है, कृष्ण में कभी तृप्त नहीं होता वो, कि मतलब चाहे कृष्ण को छोड़ना चाहे तो तृप्त नहीं है, लेकिन हाँ तृप्ति भी है कृष्ण में, वो तृप्ति भी है। क्यों? क्योंकि और दूसरी चीजें नहीं चाहिए उसको, और कृष्ण में तृप्ति भी नहीं है कि मतलब कहे कि बस हो गया, आप मुझे कुछ कृष्ण को नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो कृष्ण में वो जो है तृप्त नहीं भी है, और कृष्ण में तृप्ति भी है, है ना। इस प्रकार से तृप्त आत्मा। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जेवादो स्वयं स्फुरत के दहा। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो इसको कहते हैं विज्ञान। यहाँ विज्ञान की परिभाषा प्रभुपाद जी बताते हैं क्या कि कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं को समझना। कैसे समझना? अपनी इंद्रियों के द्वारा समझना। अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं को समझना, इसको कहते हैं विज्ञान, है ना। तो जो सहजियां हैं वो कृष्ण का नाम लेते हैं, नाम कीर्तन करते हैं और बहुत जो है प्रेम दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण को। इस कारण से उनको बीड़ी की जरूरत पड़ती है, आप समझे। लेकिन जब इंद्रियों से कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं को आपने ग्रहण कर लिया तो फिर इंद्रियां ये भौतिक संसार के विषयों को नहीं चाहेंगी, है कि नहीं? क्योंकि इंद्रियां जो है इसमें तृप्त हैं, तो फिर भौतिक संसार की कोई चीज नहीं चाहेंगी। तो इसको कहते हैं विज्ञान। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि विधि क्या है इंद्रियों से कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं को समझने की, विधि क्या है? सेवो उन्मुख ही सेवा दो, इंद्रियों को सेवा के उन्मुख किया जाए, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। जिह्वा दो, जिह्वा से जो शुरू होती है, आप समझे, जिह्वा जो है ये ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जिह्वा बोलती है तो कर्मेंद्रिय हो गई, और स्वाद लेती है जिह्वा तो ज्ञानेन्द्रिय हो गई, है ना। तो ये केंद्र बिंदु है जिह्वा, ज्ञानेन्द्रियों का भी और कर्मेंद्रियों का भी। शुरुआत होती है कृष्ण की सेवा की, शुरुआत होती है जिह्वा के द्वारा। ज्ञानेन्द्रिया पांच है और कर्मेंद्रिया भी पांच है ना। तो जिह्वा के द्वारा सेवा के उन्मुख किया हुआ जाए, जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जिह्वा का काम क्या है? स्वाद लेना, तो कृष्ण के प्रसाद का स्वाद लेना, ठीक है ना। तो जो विधि है कृष्ण को भोग लगाने की, उस विधि के अनुसार कृष्ण को भोग लगा करके, और जब नियम बनाया जाए कि कृष्ण को अर्पित किए बिना और कुछ नहीं ग्रहण करना जिह्वा के द्वारा, तो ये सेवा की उन्मुख हो गई जिह्वा, ठीक है ना। तो कृष्ण की सेवा या भक्ति यहां से शुरू होती है, क्या? प्रसाद खाने से, ठीक है ना। और कर्मेंद्रिय के रूप में जिह्वा का काम है बोलना। तो जिह्वा बोले क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सेवा की उन्मुख हो जिह्वा, मतलब कि इसका अभ्यास करे, हमेशा इसी को बोले, इसकी सेवा और कुछ नहीं बोलना। तो ये सेवा की उन्मुख है। और फिर नियमित रूप से कम का नियम बनाए कि इतना कम से कम करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, तो सेवा की उन्मुख है। तो इन दो कार्यों से भक्ति शुरू होती है ना। तो इस जिह्वा को जो है कर्मेंद्रिय के रूप में कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, और ज्ञानेन्द्रिय के रूप में भी कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, तो बाकी इंद्रियां फिर अपने आप कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी। एक लग गई तो उसके बाद दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, जैसे इंजन होता है ना, इंजन चल पड़ा तो फिर उससे जुड़े हुए जितने डिब्बे हैं वो पीछे पीछे चलने लगते हैं, ठीक है। तो पांच जो है ना कर्मेंद्रियों के डिब्बे हैं और पांच ज्ञानेन्द्रियों के डिब्बे हैं, ठीक है ना। और इंजन जो है ये जिह्वा है, कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेन्द्रियों का भी, है ना। तो कृष्ण की सेवा में लगा दिया अगर जिह्वा को, तो बाकी इंद्रियां भी लग जाएंगी कृष्ण की सेवा में। तो इस तरह से जो है विज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ज्ञान जो है सहायता करता है विज्ञान में, लेकिन अगर विज्ञान के लिए, विज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने अगर कुछ कार्य नहीं किया, कुछ प्रयास नहीं किया, तो वो ज्ञान फिर बेकार हो गया, वो ज्ञान बेकार हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान ये दोनों चीजें जो है भगवान मित्र में इसी से कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है। ज्ञान का मतलब है कि कृष्ण को समझना कि भगवान है परम सत्य कृष्ण है, परम सत्य को समझना ज्ञान है, लेकिन फिर परम सत्य का अनुभव करना ये विज्ञान है कि नहीं। विज्ञान तृप्त आत्मा विज्ञान हा? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान नहीं होता है लेकिन विज्ञान होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान ना हो लेकिन विज्ञान हो। जैसे जो ब्रजवासी हैं तो उनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है परमेश्वर है, लेकिन विज्ञान है कृष्ण के रूप का माधुर्य का अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो जो पलकें बंद होती हैं वो भी उनको योग के बराबर लगता है। कितना उनको कृष्ण के रूप का माधुर्य प्राप्त हो रहा है कि पलकें बंद होने में उनको योग के समान लगता है, है ना। तो विज्ञान का मतलब ये है, ये विज्ञान है। तो फिर अगर विज्ञान है तो फिर अज्ञान नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं है। ठीक है वो ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है भगवान की योग माया के द्वारा, लेकिन उसको अज्ञान नहीं कह सकते। माता यशोदा में अज्ञान नहीं है, वो कृष्ण को भगवान नहीं समझती हैं, कृष्ण को अपना पुत्र समझती हैं, अज्ञान नहीं है। क्योंकि इस विज्ञान में तृप्त आत्मा, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं, है ना। तो फिर तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, है ना। तो तृप्त आत्मा होना चाहिए, तृप्त आत्मा कि कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का जो है आस्वादन होना चाहिए। कृष्ण की सेवा और कुछ चर्चा नहीं होती, मन जो है कृष्ण की सेवा और कुछ चिंतन नहीं करता, है कि नहीं। कान है वो कृष्ण कथा को ही सुनना चाहते हैं, है कि नहीं। हाथों से कृष्ण की सेवा हो, किसको कहते हैं विधि, विज्ञान की विधि, वैज्ञानिक विधि है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भारत संघ ये जो है ना एक वैज्ञानिक विधि बताता है, ये वैज्ञानिक विधि है। क्योंकि इसमें जो है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है, खाली जो है ज्ञान नहीं है, इसमें विज्ञान है, विधि है। तो जिसके पास जैसी जैसी योग्यता हो अपनी योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगाए, तो इस प्रकार से कृष्ण जो है स्वयं ही विस्फुरित है। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला स्वयं स्फुरित होते हैं, अपनी इंद्रियों में स्फुरित होते हैं, इंद्रियों से अनुभूति होती है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की। तो ये विज्ञान कहलाता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। हाँ तो भगवद गीता ज्ञान और विज्ञान दोनों है, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कई बार कहते हैं कि विज्ञान के सहित मैं बताऊंगा, सातवें अध्याय में भी भगवान कहते हैं ज्ञानम देहम सब विज्ञानम एकदम बक्ष्याम में शेषता, किस ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान के सहित बताऊंगा। और विज्ञान के सहित बताऊंगा तो फिर क्या होता है, ये ज्ञात अन्य है भूयो अन्य ज्ञातव्यम न विशेषते, जिसको जान करके और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, है ना। इसी प्रकार से नवे अध्याय की भी पहले श्लोक में भगवान कहते हैं यदम तुते कोई हितम प्रवक्ष्याम सुबे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात मोक्ष से सुबह, इस ज्ञान को विज्ञान के सहित बताऊंगा जिसको जान करके अशुभ से तो मुक्त हो जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, विज्ञान है, खाली ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। लेकिन मात्र संसारी विद्वत्त से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, उसको ज्ञान हो सकता है लेकिन विज्ञान नहीं होगा। और विज्ञान का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत, अमृत की प्राप्ति, जिसमें आप अमृत का अनुभव करो। अमृत का मतलब मृत्यु के कष्ट से छुटकारा, मृत्यु के कष्ट से छुटकारे का अनुभव करो, इसको कहते हैं अमृत। तो कृष्ण भावना में भावित होना है ना, ये विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब है कि ज्ञान का प्रयोग करना अपने जीवन में तो मात्र संसारी विद्वत्त से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता या भगवद्गीता को नहीं समझ सकता। मात्र संसारी विद्वत्त से भगवद्गीता को समझ नहीं सकता है, उस ज्ञान को वो व्यवहार में नहीं ला सकता मात्र संसारी विद्वत्त से। इसके लिए क्या करना चाहिए? चौथे अध्याय भगवान ने कहा है तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो यहां पर ज्ञानी तत्वदर्शी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो वही तत्वदर्शी का मतलब विज्ञान, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है यानी ज्ञानी और विज्ञानी, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, कृष्ण तत्व का दर्शन किया। यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। तो कृष्ण के तत्व को जानने वाला जो हो वो गुरु है। केवा शूद्र केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के ने नोय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। चाहे वो शूद्र हो और चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है ना।